मौला हुसैन की माँ को मनाने की और अपनी माँ समझ में आ रही है। अजीब बात कर रहा हूँ, अपनी माँ समझ में नहीं आ रही। करबला में सिर्फ दो पैगाम थे हजरत इमाम हुसैन के। ह्यूमन फिलोसफी मेरा सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन है मेरे पास, स्टडी है मेरे पास, कुछ पढ़ के सुना रहा हूँ, खामखा नहीं सुना रहा हूँ। करबला में सिर्फ दो पैगाम थे मौला हुसैन के, सुनो गौर से। एक ये था, खून में डूबा हुआ, लहू में डूबा मेरा मौला हुसैन, आसमान की तरफ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीउल वलीउल्लाह वसीउ रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिलाह बस। पलटा हुसैन, फैमिली फैमिली फैमिली, बेटा बेटा लिए अकबर जैसा। फिर पलटा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर पलटा, बहन बहन ज़ैनब जैसी जैसी, फैमिली फैमिली फैमिली। फिर पलटा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाई हो सौतेला रे तो अब्बास जैसा, भाई हो तो हसन जैसा, माँ हो तो मेरी माँ जैसी, बाबा हो तो मेरे बाबा जैसा। फैमिली 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 फैमिली। इस ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर कानून भी आ गया, रियासत भी आ गई, तमाम इखलाकियात भी आ गई। और पलटा पलटा तो फैमिली 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 फैमिली। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ आपसे, अब फैमिली का कोई कनीज हो घर में, फैमिली में फिज़ा जैसी, तो उसको माँ का दर्जा किस तरह दिया जाता है? फैमिली फैमिली फैमिली। और उसके बाद फैमिली का कोई दोस्त हो तो हबीब इब्न मुज़ाहिर जैसा, फैमिली फिर और फैमिली में चल के कोई दुश्मन आए हुर जैसा, तो फैमिली का बिहेव क्या होना चाहिए? हुसैन कहना ये चाह रहा था कि जिसकी फैमिली शाद, उसका हज भी शाद, उसकी ज्यारतें भी शाद, बेटी से जो कमिटमेंट को निभा नहीं पाया, वो शहजादी सकीना को मनाने की कोशिश ना करे, जो घर की औरत वो माँ के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, अगर उनकी इज्जत ना कर पाया तो दिल से ख्याल निकाल दे कि तुझसे हुसैन राजी हो जाएगा। हुसैन ने फैमिली की बात की। और मेरी बहनों, जब तक तुम्हारे सर ढके हुए हैं तब तक हम भाइयों के सर उठे हुए हैं। और तुमने अगर घर में नमाजों का और शबे जुमा में दुआ तवसल और इन चीजों का एहतमाम किया तो तुम्हारे घर के मर्दों की रोटियों में इजाफा हो जाएगा, रिस्क में इजाफा हो जाएगा, जिंदगी में इजाफा हो जाएगा। पूरा पूरा इस्लाम, उलमाए दीन बैठे हैं, अगर कोई गलत बात करूं मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन तस्दीक कराने से करा लीजिएगा पहले। पूरा इस्लाम पेश कर रहा हूं, पूरी करबला पेश कर रहा हूं, मौला अली की पूरी जिंदगी पेश कर रहा हूं, मोहम्मद वाले मोहम्मद की पूरी जिंदगी को पेश कर रहा हूं। एक ऐसा खुतबा जो तारीख नौखानी में पहली बार ये शर्फ मिला कि मुझे पढ़ने का मौका मिला, मकातिल की तमाम किताबों के मुताले के बाद, क़िबला हौसला अफजाई, मकातिल की तमाम किताबों के मुताले के बाद आपके बच्चों तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं। मेरी बीबियां यहां बैठी हैं, जब घर जाओ तो एक काम करना, कि इस खुतबे को जहन में रखना, जो जाती झगड़े हों उनको भुला देना, जो मेरे बहन भाई बैठे हैं इस खुतबे के सत्ते में, अल्लाह हमारी जहनी और जिस्मानी परेशानियों को दूर कर दे मेरा मौला। बस अब मेरे पास वक्त नहीं है, थोड़ा सा मातम करवाऊंगा आपके साथ, जो हल्का बना के मातम करना चाहता है मैं सब कर लीजिएगा। असल पैगाम है मेरा एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, दैट्स ऑल। तुम्हारा बच्चा तालीम याफ्ता होगा तो तुम्हारे घर की आजादारी बेहतरीन होगी, ये मेरे जहन में है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या लेने आए हम लोग मजलिस के अंदर, क्यों बैठे हो? ज़हनी और जिस्मानी सुकून लेने आए हो ना, बच्चों की तालीम लेने के लिए आए हो, और कोई मकसद है? कि हुसैन अपने अब्बास के परचम के साए में ले ले, तो साए में आते हो तो उसमें एजुकेशन तो पहले है, साए में आते हो तो तुम्हारे बच्चों की तरबियत तो पहले है। हाय हाय, अब इस वक्त में एक ऐसा खुतबा पेश कर रहा हूँ जो बड़ा जरूरी खुतबा है। शाम की ज़ियारतें अगर किसी ने की है बगैर किसी उसके जरा से हाथ उठाओ, अब जो आगे हो जरा पीछे पलट के देखें कि ये बहुत कम हाथ उठे हैं। जाओ मेरी दुआ इस मजलिस में मांग लेना, सैयदा ज़ैनब मज़लूमा इस वक्त आई हुई है बीबियों में, शाम वाली बीबी आई है, अल्लाह करे वो आपकी दुआ को सुने آپ کو کربلا کی زیارتوں پہ بلائے, اللہ آپ کو شام کی زیارتوں پہ بلائے. اب قبلہ میری طرف دیکھنا, بیٹا بیٹھ جا, اب میں ذرا سی توجہ قبلہ, اب میں جنہوں نے نہیں کی شام کی زیارتیں, میں جب شام کی زیارتوں پہ گیا تو وہاں میں نے ابن زیاد کا دربار دیکھا, ملعون کا. میں نے اس کا دربار دیکھا. اب سنو, شاید کسی ذاکر نے آپ کو بتایا ہوگا, میں تھوڑا سا نقشہ اس کا کھینچ رہا ہوں. اس کے دربار بہت بڑا ہے, اس کو جتنے بڑے یہ مومنین و مومنات یہاں بیٹھے ہوئے, اس کو آپ تقریباً 6 گنا بڑا کر رہے ہیں, اتنا بڑا دربار. اور جس پہ یزید بیٹھتا تھا وہ 20 فٹ اونچی جگہ تھی جس تخت پہ بیٹھتا تھا. لعنت پر رمیش, اس تخت پر یہ بیٹھا ہوا تھا. اور سننا, اس تخت کے دونوں طرف اس طرف وڈن لکڑی کے جیسے چبوترے بنے ہوئے, جن کے چاروں طرف ایک حلقہ بنا ہوا ہے چوکور, ایک اس طرف اور ایک اس طرف. سامنے بالکل اس کے ممبر تھا اور بیچ میں جگہ تھی جہاں 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے, پوری دنیا سے آئے ہوئے. جب یہ دربار سجا ہے اتنے 20 فٹ اونچے. اب جو میری غور سے سن رہے ہیں, جو برادران اہل سنت یہاں پر آئے ہیں, اب دنیا میں جو ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ اپنے آپ کو پیٹتے کیوں ہو, ماتم کرتے ہو, یہ روتے کیوں ہو, لو آج غریب بن کر کے میں کچھ بتانا آپ کو چاہ رہا ہوں. بیٹا بیٹھو, غریب بن کر کے میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. یزید 20 فٹ اونچا بیٹھا ہے, لباس فخرانہ بیٹھا ہوا ہے, اور اپنی بچی کو بہترین لباس پہنا کر کے بٹھا رہا ہے, اور نیچے فاطمہ کی بیٹی ہے.